ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। भागवतम का चौथा स्कंद अध्याय 24वां और श्लोक संख्या 19। मैत्रेय उवाच। प्रचेतसः पितृवाक्यं शिरसादय साधव दिशं प्रतिचिं प्रययुः तपः व्याद्रता चेतसः। मैत्रेय उवाच। प्रचेतसः पितृर्वाक्यं शिरसा दयाय साधवः दिशं प्रतीचिं प्रयत्युः तपस्तस्याद्रतचेतसः। मैत्रेय उवाच। प्रचेतसः पितुर्वाक्यं शिरसादाय साधवः दिशं प्रतीचिं प्रययुः तपसि आदृतचेतसा। मैत्रेय उवाच। प्रचेतसा पितुर्वाक्यं शिरसादाय साधवः दिशं प्रतीचिं प्रययुः तपसि आदृतचेतसः। मैत्रेय उवाच। ऋषि मैत्रेय ने कहा, प्रचेतसः राजा प्राचीर बहि के सारे पुत्र पितुः पिता के वाक्यम शब्द को शिरसा मस्तक पर आदाय धारण करके साधवः सभी पवित्र दिशं दिशा की ओर प्रतिचिं पश्चिमी प्रययुः चले गए तपसी तपस्या में आदृत गंभीरता पूर्वक स्वीकार करके हृदय में अनुवाद और तात्पर्य श्री श्रीमदेशी भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा। ऋषि मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, अपनी साधु प्रकृति के कारण प्राचीन बहि के सभी पुत्रों ने अपने पिता के वचनों को शिरोधार्य किया और पिता की आज्ञा पूरा करने के उद्देश्य से वे पश्चिम दिशा की ओर चले गए। इस श्लोक में साधव पवित्र या सदाचारी शब्द आज की परिस्थिति में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह साधु शब्द से निकला है। पूर्ण साधु वह है जो श्री भगवान की भक्ति में सदैव लगा रहता है। प्राचीन बरहि के पुत्रों को साधव कहा गया है क्योंकि वे पिता के आज्ञाकारी थे। पिता राजा तथा गुरु को भगवान का प्रतिनिधि माना जाता है, अतः उनका भगवान के ही समान आदर किया जाना चाहिए। पिता गुरु तथा राजा का धर्म है कि वे अपने अधीनों को इस प्रकार नियंत्रित करें कि अंततः वे भगवान के शुद्ध भक्त बन सके। यह तो बड़ों का और अधीनस्थों का कर्तव्य है कि वे आदर इस प्रकार सही तथा अनुशासित ढंग से पालन करें। शिरसा यानी कि अपने मस्तक पर शब्द भी महत्वपूर्ण है, जो कि चेताओं ने अपने पिता के आदेश को मस्तक धारण किया कर लिया, जिसका अर्थ है कि उन्होंने पूरी तरह स्वीकार कर लिया। ओम ज्ञान तिमिरंदस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सगण रघुनाथान्वितं वंशजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि श्रीहरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैत्रेय उवाच प्रचेतसः पितुर्वाक्यं शिरसादय साधवः दिशं प्रतीचिं प्रययुस्तत्या कृतचेतसः। ऋषि मैत्रेय ने कहा कि हे विदुर, अपनी साधु प्रकृति के कारण प्राचीन बही के सभी पुत्रों ने अपने पिता के वचनों को शिरोधार किया और पिता की आज्ञा पूर्ण करने के उद्देश्य पश्चिम दिशा की ओर चले गए। कितने पुत्र थे? 10 या 11। अच्छा, दो शब्द पर यहाँ ज्यादा भार देते हैं, एक साधु प्रकृति का होना और पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करना, दोनों में कितना सामंजस्य है, यानी कि एक सरीखापना। दोनों ये भगवान की तरफदारी वाली सूचना प्रदर्शन करता है। पिता की आज्ञा वैदिक संस्कृति में कितनी महत्व की होती है, और ये आज्ञा की थी इन लोगों से। कौन सी आज्ञा थी? पिता ने क्या कहा? कौन सी आज्ञा थी? प्रजापति बनो, यानी कि माया में फंसो। उस समय क्या माया नहीं थी? उस समय माया थी, और बहुत लंबे काल तक जिनके आयुष्य मर्यादा, जो सत्ययुग की बात कर रहे हैं, इस आयुष्य मर्यादा में कितनी प्रजा पैदा करना। यदि कोई परिवार आज 10 पुत्र पैदा करने वाला होता तो दुत्कार्य होता है, विकल्प पात्र बनता है। और उस समय ये हजारों करोड़ों की प्रजा पैदा करने वाला प्रजापति कहता है, करोड़ तो कोई हिसाब का ही नहीं, जैसे अरबों की बात। आजकल कलयुग में 1 अरब की भारत की आबादी है, चीन की करीबन 1.25 अरब की आबादी है। इन दोनों देशों पर नजर करते पश्चिमी देश बहुत घबराते हैं कि यही हमारा जीवन का जो जो नापदंड है उसको गिरा रहे हैं। एक तरफ हम धन धान्य से संपन्न होना चाहते हैं, वो लोग समझ रहे हैं कि इनके बाइबल में, यानी कि पाश्चात्य संस्कृति, यानी कि क्रिश्चियन संस्कृति, उन लोगों को बाइबल में जीसस ने रेगिस्तान से लोगों को निकालकर, यानी गुलामी में से छुड़वाकर प्रोमिस लैंड, यानी कि कोई ऐसी भूमि पर जाने की आज्ञा की थी और उनको निर्देश किया था, उनको ले भी गए कि यहाँ तो दूध की नदी और शहद की नदी बहती है, ऐसी जगह आपको भेजूंगा जो वहां आपको शाश्वत सुख मिले। इस प्रलोभन के कारण क्रिश्चियनिटी में स्वाभाविक रूप से, यानी कि 2000 साल पहले की बात है, उस समय ये प्रोमिस लैंड की खोज में निकलने लगे थे। प्रोमिस लैंड की खोज में निकलने लगे कोलंबस भारत की संस्कृति, और जहां इतनी सारी प्रजा है, इनका गुणगान उसके कानों में पड़ा था, तो वो ढूंढने के लिए निकला। उसको दिशा का भी भान नहीं था, वो पहुंच गया अमेरिका भारत के पर। कहते हैं कि वास्को डी गामा पहले गोवा बंदर पर आया, इतिहास ये कहता है। लेकिन पिछले हफ्ते हमने अखबार में पढ़ा कि ये गुजरात के ये अरबी समुद्र में उत्खनन हो रहा है, वहां से वो एक ओशियानिक रिसर्च सेंटर जो है, वो लोग ने बहुत सारे रोमन और ग्रीक संस्कृति के साथ तादात्म्य रखने वाला बहुत सारे समुद्र में गहराई में से उनके अवशेषों की प्राप्ति की। यानी कि ये तो करीबन जीसस क्राइस्ट से भी पहले की बात बता रहे हैं। तत्कालीन रोमन रोमन और ग्रीक लोगों की संस्कृति के साथ भारत में ज्यादा तादाद में, और जब हम महाभारत पढ़ते हैं तो इन रोमन और ग्रीक साम्राज्य के आदि प्रणेता 5000 साल पहले परीक्षित के महाराजा परीक्षित चले जाने के बाद जन्मेजय आए, जन्मेजय के बाद ययाति राजा। तो ययाति के कई पुत्र, जिसमें 5 मुख्य थे, तो 5 पुत्रों में 2 पुत्र जो बड़े थे तो वो देवयानी के थे। देवयानी के पुत्र शुक्राचार्य की लड़की है, राजा और ब्राह्मण कलयुग की शुरुआत में अभी शादी करने लगे, यानी कि ब्राह्मण गिरते जा रहा तो राजा समझ रहा है कि ब्राह्मण की लड़की प्राप्त करना बड़ा ऊंचा धर्म है, और ये भी प्रजापति बनने चाहते थे। तो देवयानी की ये जो सखी थी शर्मिष्ठा, वो तो राजा की बेटी थी, फिर भी किसी वैर भाव से जब ययाति ने शर्मिष्ठा का हाथ पकड़ के कुएं में से निकाला, क्योंकि देवयानी का हाथ पकड़ के निकाला तो देवयानी उसके गले पड़ गई कि तूने मेरा हाथ पकड़ा, तू ही मेरा पति, और एक शरत पर शादी, क्योंकि जिसने मुझे गिराया है वो शर्मिष्ठा मेरी दासी बनेगी। वो राजा की बेटी को दासी बना रहे, उल्टा धंधा, और राजा ब्राह्मण की लड़की की साथ शादी करता। तो कई सूचनाएं वेद में ऐसी है कि वो प्रजा उत्पन्न करने के लिए कर सकता है, पर ये तो शुक्राचार्य की लड़की। शुक्राचार्य कौन? गुरु है, लेकिन किसके? दैत्यों के। यानी कि कोई अच्छे गुण तो वो नहीं लेने चाहिए, भगवान के भक्त नहीं, वो साधु नहीं कहना, लेकिन इनकी भी आवश्यकता होती है। ऐसे ऐसे गुरुओं की भी आवश्यकता होती है जो भगवान के पास न ले जाए। आजकल शुक्राचार्य के वंश बहुत मायावादी साधु इत्यादि जो साधु वेश में आते हैं, प्रभुपाद जी कहा कि उसकी आलोचना करते हैं, जब भगवान के पास सीधा नहीं ले जाएंगे, कहीं इधर उधर भटका देंगे। तो योग में, सिद्धियों में, कुंडलिनी योग में कोई ऐसी सिद्धि प्राप्त करने के लिए अपना अपना विज्ञापन करते रहते हैं, कोई वो कोई वो, लेकिन भगवान की शरणागति तो सदगुरु ही पहुंचा सकते हैं, बाकी असदगुरु हैं। तो गुरु, पिता और भगवान, तीनों की यह वेद शास्त्र जो भगवान ने रचे हैं, तो इनों की आज्ञा शिरोधार्य करने के लिए चाहे कैसी भी आज्ञा क्यों ना हो, उसके पीछे भगवत भक्ति या साधु चरित्र के लिए बहुत उदात्त हो जाती है। ए जा बेटा, बच्चे का दादा ऐसा ही तो है ना, आज कौन ऐसे कहेगा सीधा प्रजापति बन, यानी कि लाखों करोड़ों प्रजा का पिता बन जाए, और वो भी साधु चरित्र, साधु यानी कि इन लोगों ने कितनी तपश्चर्या इत्यादि करने के लिए जाते हैं, तपश्चर्या करने के लिए जाते हैं। अरे बच्चे पैदा करने में किन कहीं तपश्चर्या की आवश्यकता है, वो तो हो ही जाता है, एक्सीडेंट से हो जाता है कहते हैं। लेकिन नहीं, एक्सीडेंट की बात नहीं है, बात मुख्य मतलब की बात है। लेकिन ये आज्ञा में भगवत भक्ति कितनी है, ये सिर्फ इतनी सारी आज्ञा में भगवत भक्ति का बताते हैं। दूसरी ओर देखें तो ययाति महाराज ने शर्मिष्ठा से भी बच्चे पैदा किए और दिव्यांग की नजर में आ गए हैं, तो वह रुक कर चली गई अपने पिता की बात देख, उसने वचन का शर्त का बल भंग किया तो यह आती है, तो वैसे विषय लोलुप जैसा दिखाई देता था, लेकिन देखो कितना धर्मनिष्ठ, उसे शर्म नहीं आती, क्योंकि अपनी काम वासना की अतृप्ति के लिए जो शर्तें शुक्राचार्य ने रखी के हैं, अरे तो बिल्कुल ये जो जो मंजूर किया था शर्त पत्र में धोखा दिया है, तो मैं नहीं भेजू, तो शुक्राचार्य से वो हाथ जोड़कर विनती करता है कि मुझे तुम्हारी लड़की वापस दे दो, क्योंकि मेरे विषय की कामना पत्र इतना निखालस कहना भी धर्म का पालन बता, लेकिन आजकल तो लोग चोरी छुपी से करते ही जाते हैं, न तो पत्नी को पता चलता है, न पिता को, न किसी को। उसी तरह पत्नियों पर भी असर हो रही है, परदेशी अनुकरण में ये जो एडल्टरी जिसे कहते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में उसे, व्यभिचार, सब प्रकार के स्त्रियों द्वारा पुरुषों द्वारा जो व्यभिचार होता है, एक पत्नी व्रत की तो बात ही नहीं, वैसे ही सब विषय तृप्ति के लिए सिर्फ भटकते, ऐसे भी उसके लिए कमाते हैं, कोई भगवत भक्ति की तो बात ही कहां, विषयालोलुप जीवन एक ही मात्र जीवन धोरण का एक नापदंड रहता। तो जब निखारसता से ययाति अपनी गलती समझकर, गलती कैसे हो सकती है, राजा है, राजा की लड़की से तो वो कुदरती रूप से आकर्षित होगा, शर्त दी है नहीं दी है उसकी वहां ज्यादा परवाह नहीं करता, लेकिन उसकी पत्नी दिव्यानी को पता चल गया, इसलिए वचन का भंग तो हुआ, लेकिन ये वचन पर सत्ययुग में भी कितने निर्भर रहने वाला, या कलियुग या द्वापर युग पर्यंत कितने निर्भर वाले थे, वो पालन करने में ज्यादा झिझकते नहीं। तो ययाति महाराज तो कलियुग की शुरुआत में हुए, तो उनके चरित्र भी उदात्त माना जाता है। तो यदि देवयानी वापस आती है तो तुझे पहले मैं श्राप देता हूं कि तूने गलती की है, तो शुक्राचार्य ने श्राप दिया कि चल तू तुरंत बुरा हो गया, तेरी जी विषय का उपासना है वो तेरे मन की मन में रह जाएगी, इतनी जलाएगी कि बुढ़ापे में तुझे परेशानी है, बुढ़ापे में भी विषय वासना तब से छुटती नहीं, बुढ़ापे में नहीं छुटती। कोई कहते हैं कि क्या हम बूढ़े होकर बाद में हम सभी प्रकार की शिथिलता प्राप्त करके हम अपने विषय वासना तो जबरदस्ती से नहीं कर पाएंगे, लेकिन मन में जो जलन चालू रहती है, क्यों, अतृप्ति, लेकिन निखारसता नहीं आती, प्रामाणिकता से वो स्वीकार नहीं करता, अंदर अंदर गला जैसे घुटता है, वो घुटता फिरता है लेकिन जलता है। अकबर और बीरबल की बात पता है, है वो कहानी भी वो कहते हैं कि अकबर राजा कह रहे थे कि हे बीरबल, बुढ़ापे में तो विषय वासना चली ही जाती हो। तो बीरबल ने कहा ना ना ऐसा नहीं है, अरे मरते हुए आदमी को भी विषय वासना सताती है, वो भूलता नहीं कभी कि है ना मान, चलो शर्त लगा दो। तो उसने भी शर्त लगाई, ऐसी शर्त लगाई कि यदि तू गलत निकला प्रमाण देने में तो मैं तेरा नाक कान काटूंगा। बीरबल तो कहते हाँ ठीक है, चलो उपाय करें। राजा जी अपनी जो जवान लड़की है उसको सज धज के भेजा, मैं ले जाऊंगा और तुम भी पीछे पीछे आना, गुप्त वेश में, पता नहीं चले ऐसा, क्योंकि हम हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां मैं जानता हूँ एक मरीज है मरने की तैयारी कर रहा है, जब मैं इशारा करूँ तब लड़की को बुलाना और आप नजर रखना कि मरते हुए आदमी की नजर रहेगा। तो सचमुच जब बीरबल ने इशारा किया, राजा ने देखा तो वह आदमी का गला घोट रहा, अंतिम श्वास चल रहे हैं, अंतिम श्वास का मौका आया तब वो लड़की को पसार होना हुआ वहां से। तो श्वास लेते लेते उसकी गर्दन भी झुकी हो, जो वहां लड़की जाती है उसके पीछे गई और मर गए। तो राजा को कहा देखा, इसकी नजर विषय वासना पर नहीं, ध्यान तो विषय ध्यान रहता ही वो मन से हटता ही, एक बार का अनुभव कैसे भुला जाए विषयों, लेकिन उसको नियंत्रित करना, उस पर जबरदस्ती के बजाय अकलमंदी से काम करना बहुत आवश्यक। जितनी बाहर से जबरदस्ती करते हैं उतना अंदर से उछलता है, जैसे कि जहरी सांप पांव के नीचे आया हो, हमने दबा तो दिया लेकिन पांव उठाने की हिम्मत मत करना, जैसे पांव उठाए तो दशा ही समझो वो काटेगा। तो उसी तरह विषय वासना बहुत आदमी की ये जो अंतिम क्षण को भी नष्ट करती है और उसे अधोगति प्राप्त कराती है, कि दूसरा जन्म गारंटी वाला मिल जाता है। तो ये तो ययाति जो धर्मनिष्ठ था उसके लिए बुढ़ापा दे दी। शुक्राचार्य ने ये समझा, देखो उसको अभी रगड़ करें, अंदर से अंदर जपता रहे। लेकिन ययाति महाराज फिर से याचना करने लगे, ये तो स्वाभाविक है, आप लोग और आप तो गुरु हैं और असुरों के गुरु हैं, जानते हैं कि असुरों के लिए पाबंदी नहीं, लेकिन मुझे ही पाबंदी में डालते हैं क्योंकि मैं भगत, और भगत होते उसकी ये विषय वासना चालू रही थी, आप कृपा करो। तो ऐसे दुष्टों के गुरु को भी दया आ गई और तो कहने लगे कि चलो तेरी परीक्षा करेंगे, ऐसे करना कि तेरे ये जो बेटे हैं ना सारे अभी बड़े हो रहे हैं, इनसे पूछना कि तुम्हारी जवानी तुम्हारे बुढ़ापे के साथ अदल बदल कर ले तो शाप मुक्त हो जाएगा, जहां तेरे तो पांच पांच बेटे हैं इनसे पूछ। तो सचमुच ये शाप का निवारण सुनकर वो अपने बेटों से किसी गुरु के समक्ष अपनी ये जो विषय वासना की समस्या कोई बताता है, लेकिन बेटों को पता ये कितनी बड़ी बात। लेकिन ये अति महाराज धर्मनिष्ठ थे, वो निखालसता से बेटों से पूछते हैं कि मेरा ये हाल है, मैं बुढ़ा हो गया हूं श्राप के कारण, तो क्या आप वैदिक आज्ञा के अनुसार मैं आपके समक्ष ये रजू करता हूँ, क्या आप अपनी जवानी देने के लिए मुझे वापस यानी कि मेरा बुढ़ापा आप ले लो और मुझे जवानी वापस दो, क्योंकि मेरी विश्वास में अतृप्त रह जाएगी तो मैं तो भूत प्रेत योनि में चला जाऊंगा, तर्पण तो आपको ही करना होगा। तब दो बड़े बेटों ने ऐसे मजाक कर दिए, अपमान कर दिया जो वैदिक आज्ञा के बाहर थी। तो ययाति ने क्रोध में आकर कहा कि जा, तुम लोग वैदिक संस्कृति के नहीं, उदीची यानी कि उत्तर के प्रदेश में उनको भगा दिया। तो अभी तक मैं बुरा तो बुरा राजा तो हूं, पिता की आज्ञा पर राजा की आज्ञा भी सवाल हो जाएगा। पिता की आज्ञा नहीं मानते, राजा की आज्ञा का पालन करना होगा। तो सचमुच वो लोग धक्के मारकर पिता मारा। प्रभुपाद जी कहते यही दो बेटों ने रोमन और ग्रीक अंपायर बनाया, साम्राज्य की स्थापना इनके अनुजों ने की है पीछे आने वाले। तो ये वैदिक संस्कृति के बाहर के बने, लेकिन फिर भी क्षत्रिय होने के नाते उनका कोई व्यवहार बना रहा। इसीलिए महाभारत में और अपने इतिहास में भी कई कई जगह उल्लेख होता है कि पुरानी संस्कृति में भारत और ये इटली रोम के बीच व्यवहार हो रहा। जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी तब रोम से जिप्सी लोग भारत में आते और आज भी आ रहे हैं जा रहे हैं, आज भी ये जिप्सी लोग आते हैं जाते हैं। दूसरा संदर्भ ये मिलता है कि जब अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर भारत पर चढ़ाई करने के लिए आया था तो ये जो पुरु राजा पुरु ने ययाति का पांचवा बेटा था, सबसे छोटा, तो पुरु ने पिता की आज्ञा का पालन किया था, इसलिए पुरु को राजा बनना था। पिता ने अपनी इंद्रिय तृप्ति समाप्त करके बाद में पुरु को राजा बनाकर वन में चले गए। तो ये पुरु राजा ने सिकंदर की सेनाओं के सामने अपनी हाथियों की सेना लेकर गया था और पंजाब में इन लोगों को भगाया था। यही सिकंदर के गुरु थे एरिस्टोटल, प्लूटो इत्यादि में से कोई एक था, जानी का नाम है मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन उसने कहा कि तू भारत पर चढ़ाई करने जा रहा है, मेरे लिए दो चीज ला, वो पहाड़ के रूप में गिफ्ट, यदि तू जीता तो एक ब्राह्मण को लाना, दूसरा गंगा का पानी लाना। देखो कितनी महत्ता संस्कृति की पता है जो ब्राह्मण और गंगा की पवित्रता पर। तो ये जो सब चरित्र बच्चों में लाना है तो भगवत भक्त पर हमें होना ही चाहिए, पिता की आज्ञा का पालन ये तो अनायास ही आनुषंगिक रूप में चला रहेगा। लेकिन पिता की आज्ञा द्वारा भगवत भक्ति का पालन हो सकता है। माता पिता की आज्ञा को ठुकराना वो भी बच्चों के लिए करना आजकल कोई मानता ही नहीं। बच्चे बड़े हो जाते हैं तो माँ बाप कांटे की तरफ चुभते हैं, बच्चों को कहते हैं कि भैया 7 बजे के बाद देर से मत आना, 7 बजे आ जाना, तो डांट पड़ेगी, ये पड़ेगी, तो डांट के भी आदत ही होंगे, डांट स्वीकार देंगे, डांट की कोई असर नहीं होती। तो जो भगवत भक्ति की संस्कृति के लिए ये आज्ञा का पालन करने में हमें जब मौका मिलता है तो उसके पीछे माँ बाप बच्चों का सर्वोत्तम कल्याण ही तो चाहते और तो कुछ नहीं। माँ बाप की पहली जिम्मेदारी है क्योंकि भागवत धर्म यह रहता है कि पिता न बनना, गुरु न बनना, स्वजन न बनना या राजा भी नहीं बनना, यदि आपके आश्रित हो आप मृत्यु के मुख में से छुड़ाने की कोई तैयारी नहीं। बंद की कोई आवश्यकता नहीं। गुरु न सस्या स्वजन न सस्या जननी न सस्या पिता न सस्या यद्यपि न मोचित समुपेत मृत्युम। तो हम ये देखते हैं कि पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 10 लड़के एक साथ कोई तो समझता लड़के एक के बाद एक लड़का होगा तो 10 साल का सबसे बड़ा होगा एक साल का लड़का नहीं नहीं जब प्रजापति होते हैं तो इन लोगों को कोई राह नहीं देती सबसे ज्यादा एक साथ बच्चे पैदा होने वाले 7 की संख्या बताई जाती है तो क्या उस समय 10 नहीं पैदा हो सकता जाति कोई आश्चर्य की बात नहीं लेकिन हम तो यहाँ देखते थे कि ट्वींस आ गए फिर भी हम और उनको पालन करने में कितनी दिक्कत पड़ती है हा? जब एक रोता है तो दूसरा भी रोने लगता है तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। मेरा एक शिष्य है इनके बेटे ट्विंस पैदा हुए तो बेटा भी डॉक्टर था वो भी मेरा शिष्य भी डॉक्टर है अब करे क्या माता के घर में एक बच्चे को पालोगी दूसरा दादा दादी के यहाँ पलेगा तो उनको बुढ़ापे में बच्चे पालना पड़ता है अभी नहीं पालना पड़ता है क्योंकि भगवान ने काफी सबक सिखा दिया जिनकी जो मर्यादा में रहना चाहिए उसका यत्न करना चाहिए। ऐसे बच्चे पितृ आज्ञा का कैसे पालन कर सकते या पितृ तर्पण भी कैसे पालन कर सकते। तो ये वैदिक संस्कृति के अनुसार ये जो यहाँ वर्णन हो रहा है उसके पीछे भगवत भक्ति का मूल तात्पर्य है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि पिता गुरु तथा राजा का धर्म है कि वे अपने अधीनों को इस प्रकार नियंत्रित करें कि अंततः वे भगवान के शुद्ध भक्त बन सके। शीर्ष शब्द भी महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रचेता ने पिता के आदेश को मस्तक पर धारण किया जिसका अर्थ है उन्होंने पूरी पूरी तरह से स्वीकार किया उसे शिरोधार्य अपने गुरु की अवज्ञा करना वो तीसरा अपराध है तो हरि नाम पर ही सिधा जाता है। यानी कि यहाँ यदि पिता भक्त है पिता भक्त है पिता अभक्त होता है तो गुरु की आज्ञा सर्वोपरि तो होती ही शास्त्रों की आज्ञा है राजा की आज्ञा होती है तो सबका पालन करना ही होता है। तो पिता यदि भगवत भक्त है राजा भगवत भक्त है गुरु भगवत भक्त है ये तीनों की आज्ञा भगवत भक्ति को ही एकमात्र प्राधान्यता देती है तो उसका पालन करना चाहिए। हम परेशानी अनुभव करते हैं माता पिता कहते हैं अरे पढ़ ले बाद में शादी कर ले बाद में हमें मुक्त कर बाद में जो करना है तो कर अभी से कहा कृष्ण भगत बन रहा है कहते हैं हाथ जाकर क्योंकि माँ बाप नहीं अरे अब से क्या है जानते तो हैं कि करना तो चाहिए लेकिन अब से क्या मंदिर वाले अब तेरी सारी जिम्मेदार देंगे अरे भरोसा मत तू तेरा तो पांव पे खड़ा हो बाद में देख कई जगह देखे तो पिता की ये आज्ञा भी समझने के लिए लायक दूसरी तरफ देखें तो यदि मंदिर में सारी व्यवस्था हो सकती है तो क्यों दोनों का समन्वय करना चाहिए, बैलेंस रखना चाहिए। तो कम से कम इस कौन में बाहर रहते हुए भी भगवत भक्ति का प्रयोजन कर रहे हैं। तो दोनों की संतुलना रखना आवश्यक है। तो बच्चों को क्या चाहिए, बच्चों को ज्यादा अकलमंदी बनानी पड़ती है। अरे माँ बाप तोपते रहते कि हम हरि बोल करा करते हैं और पढ़ते नहीं, हरि बोल करा करते हैं पढ़ते नहीं। जो भक्त यदि चालाक है तो हरि बोल भी करेगा और पढ़ेगा। भक्त यदि चालाक है तो दोनों में चालाकी बतानी चाहिए, संतुलन करनी चाहिए। क्योंकि ईश्वर परिषद में भी कहा है कि विद्याम च अविद्याम यस्तत् वेदो भयं स अविद्याम मृत्युं त्यक्त्वा विद्यायाम अमृतम अश्नुते। विद्या और अविद्या यानी कि पढ़ना, बाहर अविद्या की पढ़ाई होती है, मंदिर में विद्या की पढ़ाई होती है, सही। दोनों का समन्वय करना, उसका भेद देखना होता है और उसका जो लक्ष्य है कि जो यदि सिर्फ अविद्या पढ़ेंगे तो मृत्यु तीर्थ मृत्यु में हम डुबकिया खाते रहेंगे और विद्यायाम अमृतम अश्नुते, विद्या प्राप्त कर हम मृत्यु के डर से बचेंगे, हम विमुक्त हो जाएंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है। तो दोनों का समन्वय करने की आवश्यकता है। यदि यूं भी देखें कि जो अविद्या पढ़ते हैं तभी तो हमें गला घोटता है, तब विद्या की ओर हम आकर्षित होते हैं। बिना अविद्या का परिचय विद्या का भी परिचय नहीं होता है। तो हम अविद्या को ठुकराए क्यों, बल्कि हम समझे उसकी आवश्यकता कितनी है, कहां तक की वो समझे, उसे अकलमंदी और बैलेंसिंग कहते हैं। जहां तक शरीर और आत्मा टिके उतनी काफी है। लेकिन कोई महत्वाकांक्षा से कुछ और करना चाहता है तो अविद्या में काफी साहस उठाना पड़ता है। जैसे बिजनेस में होता है, बहुत सारी उसकी जंखना है कि इतने सारे पैसे इकट्ठे कर दो बाद में निवृत्त हो जाऊं, लेकिन इतना अंधा साहस करता है कि वो पैसे भी दूर हो जाते। पिछले हफ्ते मार्केट गिरी थी, करोड़ों रुपए की चपत हो गई एक पग में, कितने कितना की गवाए हो तो बेचारे मन की मन नहीं जाते, वो तो अंधा साहस कहलाता है, ब्लाइंड एडवेंचर। हमें ऐसा नहीं, प्रभुपाद जी ने कहा कि शेयर बाजार में पैसे मत रखो, बेहतर है सिक्योर बॉन्ड पे रखो, इंटरेस्ट कमाते रहो ज्यादा से ज्यादा, वो ठीक है लेकिन उतना ही हिस्सा है इसमें भगवान का रखना, 50-50 बढ़ाओ भगवान के लिए, इक्वल पार्टनर तो बनाओ, क्योंकि उसकी शक्ति उसका ही इन्वेस्टमेंट हम करते हैं और उनको पार्टनर नहीं बनाते, इसीलिए गला घोटता है। तो बैलेंसिंग उसकी संतुलना बनाना और चालाकी से काम करवाना ठीक है। बच्चों को चालाक बनाने की आवश्यकता होती है, ऐसे नहीं कि मंदिर से भी उसको निरुत्साह करके भेज दिया जाए, नहीं जा तेरे पिता को हम बीच में नहीं आएंगे, तेरे और पिता को नहीं, नहीं पिता के लिए भी ऐसा समाधान की व्यवस्था काउंसलिंग सिस्टम में होती कर सकते हैं। पिता मना तो नहीं करते हैं, लेकिन जब ऐसी समस्या आती है तो इस ढंग की बैलेंसिंग बनाकर आगे बढ़ते हैं। तो एक पक्षी व्यवहार, ये तो साधु है बच्चे तो जानते हैं जीवन का लक्ष्य क्या, क्योंकि पिता भी साधु थे। इस कलियुग में कौन साधु, जो साधु बन के आते हैं उसकी पहचान करने की भी बहुत मुश्किली हो जाती है। जो पवित्र हुआ है, जो भगवान को शरणागत हुआ है, साधु का काम, साधुता का हमने पिछली बार देखा था कि साधु का परिचय कैसे करना, साधु का परिचय कैसे करोगे, स्वरूप लक्षण और तटस्थ लक्षण हुआ बताया गया, भूल गए। हरिनाम चिंतामणि में सेमिनार में कहा था साधुता के लक्षण, साधु का शरणागत होना भगवान को, वो उनका स्वरूप लक्षण है। बाकी के लक्षण जो 26 गुण उसमें पैदा होते हैं वो तटस्थ लक्षण सच्चरित्र। तो ये दोनों प्रकार से जो लक्षण प्रकट होता है, तो उस ढंग से साधुता का परिचय करना चाहिए। क्यों भगवान को शरणागत ही नहीं, क्योंकि उसके शरणागत होने का परिचय कैसे करोगे, भगवान के सामने उनके चरण पकड़ करके पड़ा रहता है, उसे शरणागत कहते क्या। शरणागत होना मनसा वाचा करुणा तीनों द्वारा अभिव्यक्त करना चाहिए, मन से वचन से और कर्म से शरणागत होने की अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो शरणागत का परिचय नहीं हो सकता, भगवान का कहा करना, शास्त्र में जो आज्ञा है, जो गुरु आज्ञा देते हैं उसका हमेशा आज्ञा पालन करना होता है, नहीं तो 26 गुण खिलेंगे। तो ये प्रचेता है भगवान शिव जी के बड़े भाग, शिव जी के बड़े, क्योंकि उमा और महेश की ये सारी प्रजा बनी जगत के आदि पिता, भौतिक पिता, आध्यात्मिक पिता, भौतिक पिता शिव जी और उमा, वो भी ब्रह्मा के वो रुकुटी से रुद्र पिता है, तो रुद्रों के स्वामी तो शिव जी है भौतिक तक, लेकिन रुद्रों का आदि शिव जी और उनका आदि तो भगवान बताते हैं। रुद्राणाम संकर्षास्मि दसवें अध्याय में भगवान कहते हैं आदित्यानाम अहम विष्णु, अदितियों के अदिति के बेटों में विष्णु वामन देव, मैं वामन देव मेरा होता भगवान के, और रुद्राणाम शंकर श्यास रुद्रों में शंकर में। तो शिव जी और पार्वती उमा और महेश इनकी भी अलग अलग समय की अलग अलग व्यवस्था अलग अलग स्तर पे है। सर्वप्रथम भगवान विष्णु की दृष्टि जो आध्यात्मिक है, वो भौतिक सृष्टि जब थी ही नहीं, लेकिन उनके अप्रकट तत्वों पर जब पड़ती है तो परावर्तित होकर उनके आसपास जो हेलो हेलो यानी अंग्रेजी में हेलो कहते हैं, आपने चंद्रमा जब पूर्णिमा या चौदस के अनुसार चंद्रमा का मुख फूल स्वरूप देखते हैं, तो चंद्रमा के आसपास रिग देखी, ठंडी की मौसम में खास दिखाई देता है, वो परावर्तित किरणें होती हैं जो दूसरा वर्तुल उसके आसपास, वो हेलो कहलाता है। तेज किरण को हेलो कहते हैं। भगवान के पीछे जब तेज किरण मथे के पीछे ही, लेकिन भगवान के तो सारे अंग में से तेज किरण निकलती है। जो तेज किरण है वो ज्ञान का प्रकाश भी कहते हैं, लेकिन वो ब्रह्म ज्योति कहलाती है। तो शिव जी उसी तरह जब भौतिक सृष्टि जब थी नहीं, लेकिन उनके मूल तत्व अप्रकट रूप में थे, तो उस पर भगवान की दृष्टि पड़ती है। भगवान की दृष्टि तो आध्यात्मिक होती है, तब वो प्रधान प्रकृति का जो परावर्तन वो दृष्टि का होता है, वो सदाशिव के रूप में, लिंग के रूप में प्रकट होता है और भौतिक सृष्टि पर सवार होता है। तो लिंग और योनि की जब पूजा होती है, वो शिव जी शिवलिंग और दुर्गा दोनों की, तो ब्रह्म संहिता में ये कहा है, लिंग योनि का कहा जाता इमा महेश्वरी प्रजा। भगवान ने सब जीवों को अपनी अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए ये दृष्टि में उनको प्रवेश कराया, और जब भौतिक सृष्टि हुई तो उसमें शिव जी महेश्वरी की प्रजा, महाईश्वरी जो दुर्गा देवी या अंबिका जिसे कहते हैं, वो भगवान की माया शक्ति की प्रजा है। तो भगवान को किसके साथ नस्बत है? भगवान का परावर्तित रूप शिव जी, तो भगवान स्वयं इन गुणों में आकर ये प्रधान प्रकृति को महत्व प्रकृति में पलटते हैं, जिसमें सत्व तम रज और तम तीन गुणों प्रवेश कराते हैं, और दृष्टि इन तीनों गुणों को हमेशा विचलित करती रहती है, और उसके जो अन्य अन्य बंधारण निकलते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब तीन गुण है तो तीन गुण, तीन गुना तीन नौ होते हैं, नौ गुना नौ काशी होते हैं, इसी तरह 84 लाख योनियों अलग अलग विविधताएं प्रकट करने के लिए जड़ और चेतन ये सब पैदा करते हैं। चेतन में वो जीव को सवार करते हैं, जड़ में जीव नहीं, लेकिन भगवान का वो जो विस्तार परमात्मा तक हर हर एक अणु और अणु के बीच में भी पहुंच जाता है, स्थिति है भगवान की। तो ये श्रीमद् भागवत ने उसकी व्यवस्था दी है। तो लिंग योनि का पिता जानता इमा महेश्वरी प्रजा, तो यहाँ कितना अच्छा संदर्भ है कि जो हेतु के लिए प्रजापति बनना है तो शिव जी का हेतु ध्यान धरना पड़ता है। अच्छी पत्नी मिले तो शिव जी का ध्यान, और अच्छे पति चाहिए तो कात्यायनी का ध्यान, उनकी पूजा है कि नहीं। यानी कि संसार में सांसारिक प्रवृत्तियां में विशुद्ध भक्ति का जो मूल हेतु है, यदि दाखिल करना है तो इनके माध्यम में आना ही पड़ता है। वही भौतिक शरीर देने वाले माता पिता, आध्यात्मिक शरीर और आध्यात्मिक तो भगवान का सीधा अंश बताया जाता है। भगवान कृष्ण को भौतिक अवस्था के साथ कोई लेना देना नहीं, उनका परावर्तित रूप को लेना देना है। इसीलिए पंच महाभूत का शरीर पंच महाभूत में ही मिलता है, लेकिन आत्मा कहां जाता है? आत्मा बारंबार विषय वासना की इच्छा करता है तो जन्म मरण के चक्कर में फंसता है। जैसी इच्छा जैसी भावना वैसा उसका रूप होता है, कभी शुकर का होता है कभी कुकर का होता है, कभी वनस्पतियों का भी होता है। नंगे रहने की आदत वाले मनुष्य से वृक्षों में आते कौन था होता है? नलकुबेर और मणिप्रिय है। तो इस तरह ये प्रचेतक प्रशिक्षित हुए पिता की आज्ञा के कारण, उन्होंने जो तप किया उसमें शिव जी इनकी तपस्या का फल देता है, और शिव जी का महिमा गा रहे हैं ये प्रचेतक। प्रजापति की ये जिम्मेदारी है, लेकिन भगवान के अनुरूप ये शिव जी का अनुष्ठान करना पड़े भगवान के अनुरूप। और इसी तरह हम इस विषय की चर्चा समाप्त करते हैं। किसी को कोई प्रश्न है?
चार समारोह में पिता की आज्ञा का लंघन करके विसर्जन करनी।
लेकिन पिता द्वारा ही तो सुना था भगवान की महिमा, लेकिन अपने ज्ञान में वो स्वयं सोचते थे कि हाँ भगवान ऐसा होगा वैसा होगा। तो जब पिता के द्वारा ही भगवान कहाँ लेते हैं, तो यहाँ भौतिक जगत में तो उन्होंने पाए नहीं, तब अपने तपोबल से वो वैकुंठ तक भी जाते हैं, लेकिन वहाँ गलती करते हैं क्योंकि भक्ति जानते नहीं। लेकिन गलती के माध्यम से भी वो भगवान को शरणागत होने तो गए ही नहीं, लेकिन गलती के माध्यम से उनको मौका मिला कि अरे वैकुंठ तक आया है, जय विजय की भी पहचान नहीं हो रही, उनको श्राप दे रहे हैं, तब उनकी शिक्षा होती है। तो जब भगवान बीच में प्रकट हो गए तो भगवान भी उनकी जो धारणा थी उनकी नष्ट हो गई। देखते ही भगवान जैसे उन्होंने कल्पित किए थे वो धारणा नष्ट हो गई, और फिर भी भक्ति का उदय नहीं हुआ। लेकिन अनायास ही समंत कुमार ने कहा भगवान के पांव पर कोई भक्ति चिपकी है, वो तो तुलसी थी। अरे ये क्या कर रही है, तुलसी द्वारा तुलसी को देखने के लिए भी मत्था मिलता है, तब भक्ति शुरू होती है। यानी कि भगवान को नतमस्तक होना एक तुलसी द्वारा चार कुमार को प्राप्त हुआ, यानी कि उनकी भक्ति शुरू हो गई। बाद में उन्होंने गलती नहीं की, लेकिन भगवान भी इसी ढंग से इन परिस्थितियों का उपयोग करके अपनी महत्ता बताने में झिझकते हैं। ये इनकी लीला है, स्वतंत्रता है।
आगे अशीन भाई राजा को तो बताया गया था कर्म कांड यज्ञ करते थे, उनको उनकी आगे कोई ऐसे भक्त को नहीं बताया गया।
लेकिन कर्मकांड का भी तो इच्छा तृप्ति के लिए है, लेकिन उस समय आप देखो कि इसके पीछे हेतु प्रजाओं पैदा करने का जो ब्रह्मा को आदेश था, वो आदेश आगे बढ़ाने के लिए ही तो ये सब मनु और शत्रुपा की प्रजा हुई। जो वंश परंपरा होती है तो उसके पीछे भगवान के प्रति उदात्त लक्ष्य किसका है, जैसे प्रजा बढ़ती जाती है वो लक्ष्य कमी को प्राप्त होता है, तभी तो भगवान को स्वयं उसी कुल में आने का अवतार या विशुद्ध भक्त का प्रकट होना संभव होता है। श्रीमद् भागवत में देखो फिर कितनी ऐसी कुल परंपराएं बताई, इनका ये बेटा उनका वो बेटा, और इन बेटे को जाने की आवश्यकता क्या, अरे कौन बेटा भगत बना है और भगवान ने किस कुल में अवतार, इनका सत्कार कितना, उन्होंने क्या किया। तो भक्ति का तो लक्ष्य रहता ही है, ज्यादा प्रकट नहीं होता, तो कर्म कांड द्वारा, ज्ञान कांड द्वारा और उपासना कांड द्वारा, ये तीनों कांड द्वारा उस समय में तो उसकी सराहना की जाती थी, क्यों लक्ष्य पता। आजकल कर्म कांडों में क्या लक्ष्य है, भगवत प्राप्ति का है क्या, तो फिर इंद्रिय तृप्ति का लक्ष्य कलयुग, किसी की भी प्रति के लिए कोई नहीं करता, खुद की प्रति के लिए कर्म करने का। और कराने वाला भी पेट का उपार्जन व्यवसायी बन गया, ब्राह्मण व्यवसाय होता है क्या, कभी नहीं लिखा ब्राह्मणों के लिए व्यवसाय। ब्रह्म कर्म स्वभाव जब जो है तो देखो सम दम तप शौच शांति आजम एवज अहिंसा आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव जब, इसमें ये सारे लक्षण कोई व्यावसायिक लक्षण है क्या, यदि व्यवसाय हो तो पठन पाठन जजन जायन दान प्रतिकृत, खुद के लिए अभ्यास करना परम तत्व का, यह तो स्वरूप अभ्यास करना यजन यह खुद के लिए यज्ञ करना अनुष्ठान करना और दूसरों को उनके लिए करवाना और दान ग्रहण करना और दान देना, ये कोई व्यवसाय है क्या? बिजनेस या किसी की नौकरी है इसमें? सुरक्षा इनको कोई इनकम टैक्स नहीं लागू करते थे, आप तो ब्राह्मण क्या मंदिरों को भी इनकम टैक्स, कलयुग है। एक रेस्टोरेंट खोल के तो देखो बाद में पता चल जाए, गोविंदा हड्डियां कम से कम हड्डियां पवित्र हो जाती, यानी कि उनकी भौतिकता में यदि कोई अवशेष बाकी हैं, जब जलाते हैं तो पंचमहाभूत भस्म तो रहती है ना, वो भी बहादे पवित्र स्थलों में, तब भौतिकता रहती नहीं, उसको विलीन करनी ही होती है। मन से ही मुक्त हुआ है तो शरीर से तो कब का मुक्त हो गया है। ये मुक्ति भक्ति में अनायास ही प्राप्त, जीते जी प्राप्त हो जाती, मरने के बाद नहीं। विशुद्ध भक्त को जलाने की आवश्यकता होती है क्या? न मरने की जाओ तो चूरा करना चाहिए, चूरे करने के भी आने तो वैसे ही बायोडिग्रेडेबल है अस्थियां, वैसे चली जाएगी। जो जो पृथ्वी के तत्व है उनकी तो बनी है, वो प्रदूषण नहीं कर पाए, नहीं तो बाबा रामदेव उठा के ले जाएंगे फिर दवाई में उठा जाएंगे, बस में ही होगी, नहीं तो पुरातत्व वाले निकाल के ले जाएंगे और अपने सभी स्थान में रखेंगे। बढ़िया प्रश्न, बहुत पिता की आज्ञा का उल्लंघन सिर्फ यदि भगवत भक्ति को संदर्भ में ही, हम मान लेते हैं कि पिता की पिता भगवत भक्त है, वहां से शुरुआत होती है, नहीं तो पिता बनने का अधिकार भी नहीं। कुत्ते बिल्ली जैसे बच्चे पैदा करने के लिए पिता बनने की कहां सूचना, प्रभुपाद जी कितनी उपासना करते हैं। आजकल लोग कुत्ते बिल्ली जैसे बिन जिम्मेदार रहकर बच्चे पैदा करते हैं, वो तो अपने विषय वासना, लेकिन विषय वासना को भी नियंत्रित करने के लिए ये सारे विधि विधान की आवश्यकता थी। 16 संस्कार जो हैं और जन्म से लेकर मृत्यु तक, यानी कि गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक जीव को जब दाखिल करते हैं तब से लेकर जीव जब दूसरी योनि में चला जाता है तब तक 16 संस्कार में जाना पड़ता है, न तो हिरण्यकशिपु ने किए हैं, ये तो नारद मुनि ने बचा है। और नारद मुनि दखल करेंगे विशुद्ध भक्त के लिए बहुत साहस लेकर, लेकिन नारद मुनि भी चालाक गुरु थे। पहले तो कयाधु को यानी कि प्रहलाद की माता को हिरण्यकशिपु जब चला गया लड़ाई करने के लिए, अकेली थी और देवताओं से मारने आए थे, तो इसमें मध्यस्थी करके अपने यहां ले गए, आजीवन ब्रह्मचारी कोई किसी माता की प्रसूति करा के, ब्रह्मचारी का धंधा थोड़ा है, लेकिन भगवत भक्ति का लक्ष्य विशुद्ध भक्त। प्रहलाद महाराज कैसे बना, जब नारद मुनि की विशुद्ध भक्ति का संदेश सुन, ज्ञान की उसके मन में श्रवण, जितना वो श्रवण शक्ति स्मरण उसमें सारा ग्रहण करके बताया, सही। तो पिता उसके विपरीत, लेकिन भगवान की आज्ञा है ये जितना विपरीत है उतना ही उसे स्ट्रांग बनाओ। प्रहलाद पिता जितने दुष्ट हैं उतनी ही मात्रा में कम से कम प्रहलाद को स्ट्रांग बनाना होता है, इसलिए नारद मुनि का ये शिक्षा बहुत आवश्यक है। प्रहलाद उनका शिष्य होते हमें बताता है कि कैसे आचरित रमान भागवता में 5 साल की उम्र से आपको धर्म पढ़ाने की आवश्यकता। जब भगवान की शरणागति नहीं लेता है और जिसकी कोई कोई भावना ही नहीं, इनकी आज्ञा का पालन करने से कोई फायदा नहीं, चाहे वे अपने पिता हो, तो उनको भी समझाने की आवश्यकता होती है, मध्यस्थी करने की आवश्यकता होती है। और साथ साथ में बच्चा एक तरफ ही ज्ञान प्राप्त करे ऐसा नहीं, कम से कम पढ़ना लिखना, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मिनिमम ये शुड नो हाउ टू राइट एंड रीड। अशिक्षित न रहे, क्योंकि जो शिक्षा की आवश्यकता है तो विशुद्ध भक्त बनाने के लिए तो यही सीधा उपाय है। यदि आप उसे मैथ्स पढ़ाओ या साइंस पढ़ाओ, ये जो अविद्याएं हैं ये पढ़ाने का यदि कोई आग्रह करता है तो वो विशुद्ध भक्त तो नहीं बने, भक्त बन सकता है लेकिन धीरे धीरे विशुद्धि के लिए उसको रगड़ करनी पड़ेगी। तो मनुष्य अपनी मर्यादा में कम से कम जितना हो सके उतना स्वीकार, लेकिन सिद्धांत तो यही रहता है कि दुष्ट पिता की आज्ञा का पालन नहीं करना। माता पिता भाइयों ये सभी यदि अंतराय करते हैं भगवान नाम लेने में, जिनका त्याग करने का उदाहरण बताइए, पिता का त्याग प्रहलाद ने किया, माता का त्याग किसने किया, भरत ने, पतियों का त्याग किसने किया, स्त्रियों, और सर्वस्व त्याग किसने किया, गोपियों। अगर गुरु श्री प्रभुपाद की